ओम शांति। हम सभी के बीच में बाप दादा की अमूल्य रतन आदरणीय राजयोगी निरंजन बहन उपस्थित हैं। आपका इस सभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। आपने ईश्वरी ज्ञान को अपने जीवन में गुजरात सूरत से प्राप्त किया, जिसको 35 इयर्स हुए हैं। 34 इयर्स से आपने अपनी जीवन इस ईश्वरी सेवा में समर्पित की हुई है। आपने विदेश यात्रा करके भी अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश पहुंचा करके अनेकों की सेवा की है, जिसकी दुआएं आपके पास प्राप्त हैं। साथ ही साथ में 19 जितनी विंग है, जिसमें मीडिया विंग गुजरात के आप कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी ईश्वरीय सेवाएं देते रहते हैं। आपकी विशेषता है, आपका नेचर बड़ा सरल है, हरेक के साथ बड़ा मिक्स होकर के बहुत अच्छे ढंग से बाबा का अनुभव कराते रहते हैं व्यवहार में आते हुए। तो ऐसी बाबा की अमूल्य रतन, जिसकी वाणी बड़ी मीठी है, तो राजयोगी निरंजन बहन के स्वमुख से, ज्ञान रतन से हम अपनी झोली को भरेंगे। राजयोगी निरंजन बहन, आप वर्तमान समय गुजरात सूरत समझौन के रूप में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं।
ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष आप सभी बाबा के नूरे रतन, बाबा के अति प्यारे तीव्र पुरुषार्थ पे लगे हुए सभी भाई बहने विशेष मधुबन में पधारे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है बाबा के घर में। अभी का ये जो तन है, गुजरात का सेवा का तन है, और सभी गुजरात के चारों ओर से आए हुए सेवाधारी भाई बहने और कुछ एक पार्टियां भी पहुंची हुई है। तो आज से ही हमारा ये पुरुषार्थ का भी विशेष क्लासेस आदि शुरू होने जा रहे हैं। तो हमारी प्यारे दादियों से भी आज मिलन होगा। जब तक हमारी दादियां हमारे बीच में पहुंचे, तब तक हम कुछ ज्ञान रत्नों को भी प्राप्त करेंगे। गीत के द्वारा भी हम यही सुन रहे थे कि बस एक यही लगन हम सबको लगानी है कि हमें अब तपस्या करनी है। लेकिन तपस्या करने के लिए भी पहले हमें बाबा जो रोज मुरली के अंदर एक बात कहते हैं, और वह है ज्ञान और भक्ति। कई बार हम मुरली के द्वारा सुनते हैं कि ज्ञान और भक्ति में दिन और रात का अंतर है, लेकिन दिन और रात का अंतर माना क्या? अगर पूछा जाए तो हम यही कहते हैं कि दिन ज्ञान माना सद्गति, सत्युग त्रेता, और भक्ति रात माना जहां दुर्गति है द्वापर कलयुग में है, लेकिन जैसे दिन और रात में कितना अंतर होता है, इसी रीति से ज्ञान और भक्ति के बीच में भी एक बहुत पतली सी लकीर है जिसको हमें समझना है। बोलने में तो बोल देते हैं हम कि हम ज्ञान में चलते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि ज्ञान में चलते हुए भी जैसे भक्ति के संस्कारों को लेकर के ही हम चल रहे हैं। चलते हैं ज्ञान में, अगर कोई कहे तो भी हम यही कहते हैं हम इतने साल से ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन भक्ति के संस्कारों को लेकर के या भक्ति मार्ग की तरह ही हम चलते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसा कौन सा विशेष अंतर ज्ञान और भक्ति के अंदर रहा हुआ है जिसको हमें समझना है। जैसे कि भक्ति के अंदर सिर्फ भावना होती है, श्रद्धा से भावना से चलते रहते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग के अंदर देखा जाए तो ज्ञान में विवेक और भावना दोनों का बैलेंस होता है। भक्ति के अंदर जैसे हमने किसी ने बताया उसी रीति से हम भक्ति करते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, कभी हम अपने विवेक से अपनी बुद्धि से सोचते नहीं है, लेकिन जिस तरह से भक्ति मार्ग वालों ने बताया, किसी शास्त्रों के द्वारा सुना, किसी गुरुओं के द्वारा सुना और उसी रीति से हम चलते आते हैं, करते रहते हैं। जैसे पूछा जाए कि हम रोज सुबह क्लास में आते हैं तो हम देखते हैं भक्ति के अंदर भी रोज सुबह में मंदिर में जाते हैं भक्त लोग। तो जैसे भक्ति के अंदर भी एक नियम होता है कि रोज सुबह में मंदिर में जाना है तो जाना है, मन लगे या ना लगे जाना है। तो इसी रीति से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सेंटर पर भी रोज सुबह मुरली क्लास करने आना है तो आना है, फिर हमारा मन लगे ना लगे लेकिन मुझे सेंटर पर जाना है। इस रीति से भाई यहाँ पर कहते कि रोज सुबह में उठते हैं, भक्ति में भी कई भक्त लोग सुबह में उठ करके मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर हम भी उठते हैं। फिर भी जो अंतर है तो वह अंतर कौन सा है? तो सबसे पहली जो बात है कि यहाँ हमारे सामने एक लक्ष्य स्पष्ट है, जबकि भक्ति के अंदर कोई लक्ष्य नहीं होता है। भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, हाँ इतना कहते हैं कि कभी न कभी भगवान हमें मिल जाएगा, क्योंकि भक्ति करने से भगवान मिलता है तो भक्ति करते रहो। लेकिन यहाँ पर हमें जो लक्ष्य मिलता है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो इतना स्पष्ट लक्ष्य जो हमें यहाँ पर ही प्राप्त होता है। तो भक्ति में भावना से श्रद्धा से चलते रहते हैं और हमेशा विवेक और भावना दोनों का बैलेंस चाहिए। जहाँ सिर्फ भावना से ही चलते रहते हैं वहाँ पर कभी कभी वह भावना अंधश्रद्धा का स्वरूप पकड़ लेती है, और अगर सिर्फ विवेक ही चलाते रहते हैं, भावना नहीं होती है, तो वह विवेक भी कभी कभी संशय का रूप धारण कर लेती है। और इसलिए ही बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि विवेक और भावना दोनों का बैलेंस आवश्यक है। विवेक माना सोचना दिमाग से होता है और भावना अर्थात समझना उसकी अनुभूति करना जो दिल से होता है, तो दोनों का बैलेंस आवश्यक है। जैसे आज कोई भक्ति करते हैं, भक्ति के अंदर कई प्रकार की रसम अपनाते हैं, जैसे कि मंदिर में जाते हैं तो रोज चप्पल बाहर उतार करके ही जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप चप्पल बाहर क्यों उतारते हैं, तो अगर कोई भक्त से आप पूछो क्या जवाब देंगे? बस उतारना है माना उतारना है, एक रसम है, यही जवाब देंगे। परंतु हम तो जानते हैं कि मंदिर में जाते हैं तो चप्पल क्यों बाहर उतारते हैं। जैसे आज की मुरली के अंदर ही बाबा ने हमें कहा कि तुम बच्चे जानते हो इसलिए प्रश्न पूछ सकते हो, वो लोग तो जानते ही नहीं इसलिए प्रश्न नहीं कर सकते। तो अगर हम पूछेंगे तो हम तो जानते हैं कि चप्पल क्यों बाहर उतारते हैं, वास्तव में इसके पीछे भी भावार्थ क्या है कि यहाँ पर चप्पल के लिए कहते हैं कि ये एक चमड़ा है और चमड़ा माना अपवित्र होता है। तो जब भगवान के पास जाते हैं तो अपवित्र वस्तु को साथ में लेकर नहीं जा सकते और इसलिए चप्पल को बाहर उतारते हैं। वास्तविकता उसकी ये है, उसका भावार्थ ये है कि जब हम परम पवित्र परमात्मा से मन और बुद्धि से मिलन मनाने के लिए जाते हैं, तो ये देह भी तो क्या है, ये देह भी तो चमड़ा है ना? तो इस देह रूपी चमड़े को यहाँ पर उतारना अर्थात इसको बुद्धि से भूलना और फिर हमें बाबा को याद करना है। तो इसी बात को उन्होंने इस तरह से ले लिया कि मंदिर में भगवान के सन्मुख जाते हैं तो जूते चप्पल मंदिर के बाहर छोड़ के जाना है। तो यहाँ पर हर बात को लॉजिकली समझाया जाता है, विवेक से उसको समझा जाता है और फिर उसका अनुभव करना है। तो सबसे पहली बात है कि भक्ति में सिर्फ भावना होती है, जबकि यहाँ पर भावना और विवेक दोनों का बैलेंस होता है। दूसरा अंतर ये होता है कि भक्ति के अंदर भक्त भगवान से जो प्राप्ति करते हैं तो जैसे जबरदस्ती मांग करके लेते हैं, और यहाँ पर हम भगवान से विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। वो जबरदस्ती मांग करके कैसे लेते हैं कि जैसे अगर मुझे जीवन के अंदर कुछ चाहिए तो मैं भगवान के आगे जाकर कहती हूँ कि मुझे मेरा ये काम सिद्ध हो जाए तो मैं इतना रुपया आपको चढ़ाऊंगी, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं पेड़ा चढ़ाऊंगी, कुछ न कुछ मन्नत जिसको रखते हैं। तो इस रीति से भगवान के आगे हम जबरदस्ती कि आपको ये मुझे देना ही है, या तो कई बार मेरी ये प्राप्ति मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतना उपवास करूंगी, तो उपवास कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, और मान लो उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। अब उन वर्कर्स की अपनी कुछ डिमांड होती है, अपनी कुछ मांग होती है, तो वह मालिक के आगे रखते हैं कि हमको ये चीज चाहिए। अगर मालिक मना करता है मैं नहीं दे सकता हूँ या आपको नहीं मिलेंगी, तो वर्कर्स क्या करते हैं? अगर मालिक ने मना कर दिया कि आपको ये चीज नहीं मिलेगी, तो वर्कर्स क्या करते हैं? स्ट्राइक कर देते हैं ना, देखते हैं ना कई बार कि स्ट्राइक कर देते हैं, भूख हड़ताल करके बैठ जाते हैं। अगर ऐसे स्ट्राइक करके बैठ गए, भूख हड़ताल करके बैठ गए, तो फिर मालिक क्या सोचता है? कि अभी इतने हड़ताल करके बैठ गए हैं, स्ट्राइक करके बैठ गए हैं, इनको देना ही पड़ेगा। तब फिर क्या कहता है? दे दो इनको ना, दे दो इनको। अर्थात मालिक ने खुश होकर के नहीं दिया, लेकिन वर्कर्स ने जबरदस्ती लिया। तो मालिक ने खुश होकर के नहीं दिया, जबरदस्ती लिया है। तो ऐसे ही भक्ति के अंदर भी हमने क्या किया? भक्ति में भी वही करते। भगवान के आगे जाकर कहते हैं, मेरा इतना काम हो जाए, मैं इतना उपवास करूंगी। यहाँ पर भूख हड़ताल नाम दिया, इसी को ही यहाँ उपवास दे दिया। बात तो वही हुई ना, कि वहां पर भूख हड़ताल कह दिया है और यहाँ पर हम कहते हैं इतना उपवास हम करेंगे। तब भगवान भी सोचता है कि मेरे नाम पर उपवास करके बैठ गया है, माना भूख हड़ताल करके ही बैठा है, अब इसको देना ही पड़ेगा। तो भगवान भी सोचता है, क्योंकि आखिर भी वो तो दयालु कृपालु है ना, तो सोचता है इनको देना ही पड़ेगा, तो दे दिया। तो अर्थात हमने भगवान से जबरदस्ती लिया। तो जबरदस्ती जहां हम लेते हैं, वहां हमें यथार्थ प्राप्ति हो नहीं सकती है। और इसलिए भक्ति के अंदर इसी प्रकार से हम मांगते आए हैं और भगवान से लेते आए हैं। जबकि ज्ञान मार्ग के अंदर बाबा ने हमें विधि के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना सिखाया। वहां रिद्धि से सिद्धि कि कोई ना कोई प्रकार की तपस्या माना हट करके प्राप्त करो, और यहाँ बाबा ने हमें विधि से सिद्धि को कैसे प्राप्त करें। और विधि अर्थात बाबा ने हम बच्चों को कई सिद्धांत बताए हैं कि जिन सिद्धांतों के ऊपर चले। और सिद्धांत अर्थात श्रीमत, तो सिद्धांत रूपी श्रीमत पर जब चलते हैं, जिसके आधार पर हमारी साधना शुरू होती है, और जहां साधना शुरू होती है तो साधना की सिद्धि भी अवश्य होती है। तो सिद्धांत और सिद्धांत के आधार पर साधना और साधना के आधार पर सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो विधि द्वारा सिद्धि को ज्ञान मार्ग में प्राप्त किया जाता है, जबकि भक्ति मार्ग के अंदर रिद्धि से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, जबरदस्ती लेते हैं। तो जहां जबरदस्ती लेते हैं, और इसलिए उसकी जो प्राप्ति होती है वो भी अल्पकाल की होती है। तो भक्ति मार्ग के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं, जिसकी प्राप्ति भी हमें अल्पकाल की होती है, और ज्ञान मार्ग के अंदर विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं, सिद्धांतों के आधार पर चलते हुए हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो वह हमारी जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है, जिसको बाबा हमें कहते हैं एक का अनेक गुना करके मैं तुम बच्चों को देता हूँ। तो यहाँ विधि से सिद्धि को प्राप्त किया तो प्राप्ति भी जन्म जन्मांतर की, जबकि भक्ति के अंदर प्राप्ति भी अल्पकाल की ही होती है। और मुख्य अंतर क्या है कि भक्ति मार्ग के अंदर हम रोज मंदिर में जाते हैं, भक्ति करते आए हैं, जो भी शास्त्र आदि सुनते हैं तो उसमें कुछ भी नवीनता हमें नहीं लगती है, लेकिन ज्ञान मार्ग के अंदर हमें हर रोज कुछ न कुछ नवीनता प्राप्त होती है, नए नए ज्ञान रतन प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो भक्ति के अंदर कोई सप्ताह कथा करवाते हैं, कोई सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, तो वही की वही बातें होती है, क्योंकि आखिर भी वो शास्त्रों का ज्ञान है, मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, तो जिसके अंदर एक लिमिट आ जाती है। लेकिन यहाँ स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा हमें ज्ञान देता है, तो सागर माना ही जो अखूट है, जो रोज रोज हम बच्चों को नए नए ज्ञान रतन देते रहते हैं। भक्ति के अंदर हम कितनी भी सप्ताह कथा करवाएंगे, वही बातें। राम वन में गया, श्री कृष्ण ने इस असुर को मारा, इस असुर को मारा, वही की वही बातें सुनते रहते हैं, तो कुछ नवीनता अनुभव नहीं होती। लेकिन ज्ञान के अंदर, ज्ञान साकर बाप के द्वारा हमें जो ज्ञान रतन प्राप्त होते हैं, तो रोज नए नए रतन हमें प्राप्त होते हैं। इतने सालों से हम जो बाबा की अव्यक्त मुरलियां सुनते आए हैं, हम सब अनुभवी है कि हमें हर बात में, हर वर्ष जो भी बातें सुनते हैं, कुछ न कुछ नई बातें उसमें हमें प्राप्त होती है, तो एक नवीनता का अनुभव हम यहाँ पर करते हैं। नई बातें प्राप्त होती रहती है, और जहाँ नई बातें प्राप्त होती है तो वहाँ हमारा उमंग उत्साह भी सदा बना रहता है, वहाँ वही की वही बातें हैं, और इसलिए उस विधि के अंदर भी करना है सो करना है, क्योंकि उसमें भी एक डर है कि हम हर वर्ष सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, वो कराना ही है, नहीं करवाएंगे तो भगवान का श्राप लग जाएगा। हम हर वर्ष माताजी की स्थापना करते हैं, नहीं किया तो माताजी नाराज हो जाएंगी। तो वहाँ जो कुछ भी करते हैं, डर से करते हैं कि कहीं हमें श्राप न मिल जाए। लेकिन यहाँ पर हम जो करते हैं वो सोच समझ करके करते हैं, और इसलिए हमें उसमें खुशी का अनुभव होता है, नवीनता का अनुभव होता है। और क्या बात होती है कि भक्ति के अंदर जब मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में क्या रहता है कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, और जब हम सेंटर पर जाते हैं या मधुबन में आते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं, हमारी बुद्धि में क्या रहता है, क्या रहता है, हम अपने बाप के घर में जा रहे हैं ना, बाप के घर में जा रहे हैं, अपने बाबा के पास जाते हैं, तो वहाँ भगवान के मंदिर में जाते हैं, मंदिर में गए दर्शन करके आ गए, मंदिर में गए भगवान की मूर्ति के आगे खड़े रहे, कुछ न कुछ डिमांड रख दी भगवान के आगे और आ गए। लेकिन यहाँ पर चाहे सेंटर में जाते हैं, चाहे मधुबन में आते हैं, लेकिन अपने बाप के घर में हम आते हैं, ये हम अनुभव करते हैं। तो वहाँ पर तो फिर भी भक्त और भगवान का ही संबंध रहता है, जबकि यहाँ पर संबंध है, जहाँ घर है वहाँ संबंध है, और वो संबंध है बाप और बच्चे का, और बाप और बच्चे का संबंध होने के नाते से हम अधिकारी बन जाते हैं। तो हम जो कुछ भी यहाँ पर लेते हैं या हमें मिलता है, अधिकार से मिलता है। जब मंदिर में जाते हैं तो कहते देते हैं भगवान की बहुत महिमा कर लेते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, या तो हम कभी कभी ये भी कह देते हैं त्वमेव माता श पिता त्वमेव, सर्व संबंधों का गायन भगवान से कर लेते हैं, लेकिन एक भी संबंध का अनुभव जीवन में नहीं होता है। और यहाँ हम बाबा के पास आते हैं, बाबा के घर में आते हैं, तो यहाँ हमें संबंध की अनुभूति होती है, एक अपनेपन की फीलिंग आती है और अधिकार से प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर गए लेकिन मांग करके दर्शन करके आ गए, फिर भी देखो फल गायन कर लिया, त्वमेव माता श पिता कहने में तो कह दिया। अब भगवान कितनी ऊंची हस्ती है, कितनी उसकी महिमा है, कितना उसका गायन है, कितना उसके साथ हमारे संबंध है, लेकिन फिर भी अगर भगवान के साथ भक्ति के अंदर भक्तों का व्यवहार देखो तो क्या होता है। भक्त और भगवान के बीच में भगवान के साथ इतनी महिमा करते हुए भी उन्हों का भगवान के साथ का संबंध या वो व्यवहार क्या होता है, कि जैसे भगवान को यही कहते हैं, अर्थात भक्ति में जैसे आज कहते हैं ना बिजनेस सौदाबाजी चलती है, भगवान को कहते हैं मेरा इतना काम कर दिया तो आपको इतना नारियल चढ़ाएंगे, तो हम आपको इतना रुपया चढ़ाएंगे, तो भगवान के साथ भी सौदेबाजी होती है, प्यार से नहीं किया लेकिन स्वार्थ से, स्वार्थ के लिए भगवान के साथ सौदेबाजी होती है भक्ति के अंदर। और यहाँ पर वही भगवान जो मेरा बाप बन गया, जिसकी मुझे पहचान मिली, जिसके साथ मेरा संबंध जुटा, तो ज्ञान मार्ग के अंदर परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुटने से हम उस संबंध के आधार पर जो कुछ भी करते हैं, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों ही विषयों को लेकर के हम जो कुछ भी करते हैं, जो कोई भी सेवा करते हैं, जो कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं, तो उसकी हमें बहुत प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर संबंध सहित और समझ सहित हम सब कुछ करते हैं, और इसलिए ही हमें उसकी अनेक गुना प्राप्ति होती है, जबकि वहाँ स्वार्थ से भगवान से सौदेबाजी करते हैं तो उसमें यथार्थ प्राप्ति वो कर नहीं सकते हैं। और इसलिए ही बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि हम बोलने में तो बोल देते हैं कि हम इतने साल से ज्ञान में चलते हैं, लेकिन इन सारी बातों को सामने रखते हुए हम अपने आप को पूछे कि क्या मेरे अंदर भी वही भक्ति मार्ग के ही संस्कार या वही भक्ति में जो करते थे वही बातों को लेकर के ही अभी ज्ञान में तो नहीं चल रही हूँ। ये अपने आप को चेक करना है, क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छी बात एक बार बताई थी और वो है, बाबा कहते हैं मेरे तीन प्रकार के बच्चे हैं, जिसमें एक है भक्त क्वालिटी, दूसरे है प्रजा क्वालिटी और तीसरे है वारिश क्वालिटी। भक्त क्वालिटी, प्रजा क्वालिटी और वारिश क्वालिटी। अब नीचे से देखा जाए तो भक्त क्वालिटी किसको कहेंगे, कि जैसे भक्त भगवान के आगे सदैव मांगते रहते हैं, ऐसे यहाँ पर भी कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो बाबा के पास मांगते ही रहते हैं, भक्त बनकर के मांगते ही रहते हैं। प्रजा क्वालिटी माना जैसे प्रजा राजा के अधीन होती है, इसी प्रकार से कई बाबा के बच्चे भी ऐसे हैं, कई बाबा के बच्चे भी ऐसे हैं जो किसी न किसी के ऊपर आधारित होते हैं, चाहे कोई व्यक्ति के ऊपर आधारित होते हैं कि भाई आपको हम सेंटर में जाते हैं, आप भी हमारे साथ चलो, कोई न कोई हमको खींचता रहता है सेंटर के लिए और हम जाते हैं, तो जिसको कहते हैं प्रजा क्वालिटी। और तीसरा है वारिस क्वालिटी। अब वारिस क्वालिटी क्या होती है जो हम फिर सुनेंगे, अभी बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे बीच में हमारे आदरणीय दादी जी पहुंच रहे हैं, हम बहुत बहुत दिल से दादी जी का स्वागत करेंगे।